बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये इस किताब का पार्ट नंबर 13 है। आज हम किताब मुताला पाकिस्तान लाजमी रिकॉर्ड कर रहे हैं। बराए बीए, बीएससी, बीकॉम, जदीद निसाब इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के मुताबिक इस किताब के मुसन्निफ मोहम्मद नईम ताहिर पीएचडी रिसर्च स्कॉलर हैं। ये किताब आपकी खिदमत में अस्तुफा ऑडियो लाइब्रेरी की जानिब से पेश की जा रही है। ये सफा नंबर 135 है। आइए सुनते हैं पार्ट नंबर 13। हुकूमत पाकिस्तान ने इस सिलसिले में बहुत से इकदाम किए हैं ताकि किसानों को उनकी मेहनत का समर हासिल हो सके। तजावीज़। पाकिस्तान में मजमूई फी एकड़ पैदावार में इजाफे के लिए 10 ज़ेल तजावीज़ पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, सेमोथोर का सद्देबाब। हुकूमत पाकिस्तान और किसानों को मिलकर ऐसे इकदाम करने चाहिए जिससे सेमोथोर ज़दा ज़मीनों को काबिले काश्त बनाया जा सके। इस सिलसिले में हुकूमती ताउन के जरिए बहुत सारे ट्यूबवेल भी लगाए गए हैं, लेकिन बेहतर नतज के लिए ज़रूरी है कि इस सिलसिले में जदीद साइंसी तहकीक से इस्तफादा हासिल किया जाए ताकि मुल्क की मजमू पैदावार में इजाफा हो सके। नंबर 2, कर्जा जात की फराहमी। हुकूमत ने किसानों को सरमाया फराहम करने के सिलसिले में बहुत से प्रोग्राम शुरू किए हैं। वन विंडो ऑपरेशन के तहत किसानों को कर्जे फराहम किए जाएंगे जिससे किसानों को बहुत से फवायद हासिल हो रहे हैं। हुकूमत को चाहिए कि वो इस तरह के मजीद प्रोग्राम शुरू करे ताकि किसानों को ज्यादा से ज्यादा फवायद हासिल हों और मुल्क की जरूरी पैदावार में इजाफा हो। नंबर 3, आबपाशी की सहूलतें। हमारे मुल्क में बहुत सारे रकबे पर आबपाशी की सहूलतें ना होने की वजह से फसलें काश्त नहीं की जाती। नहरी आबपाशी के निज़ाम के जरिए बहुत सारे इलाकों तक पानी तो पहुंच रहा है, लेकिन फिर भी मुल्क के बेशतर इलाकों में आबपाशी की सहूलतें ना होने की वजह से रकबे को जेर काश्त नहीं लाया जा सकता। इसकी वजह से पैदावार में कमी वाकई होती है, इसलिए ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा रकबे को जेर काश्त लाने के लिए आबपाशी की सहूलतें फराहम की जाएँ ताकि ज़रूरी पैदावार में इजाफा हो सके। माहीगीरी। पाकिस्तान में साहिल समंदर के करीब और दरियाओं के किनारे रहने वाले बहुत से लोग जमाने कदीम से मछली पकड़ने के पेशे से मुंसलिक हैं और आज भी तकरीबन 90,000 अफराद इस पेशे से अपना रोजगार हासिल कर रहे हैं। मजमूई तौर पर पाकिस्तान में सिर्फ 3 पौंड मछली इस्तेमाल की जा रही है, जबकि अमरीका में 24 पौंड फी कस, बरतानिया में 40 पौंड और जापान में 91 पौंड फी कस मछली इस्तेमाल हो रही है। हमारे मुल्क में मछली काफी मकदार में पकड़ी जाती है, तहम इस काफी कस इस्तेमाल दुनिया के दूसरे ममालिक की निस्बत बहुत कम है। पाकिस्तान के अंदरूनी इलाकों में अगरचा मछली बहुत थोड़ी मकदार में इस्तेमाल होती है, तहम साहिल समंदर और दरियाओं के किनारे रहने वाले लोग इनका इस्तेमाल काफी ज्यादा मकदार में करते हैं। हमारे मुल्क के जिन हिस्सों में मछली ज्यादा पकड़ी जाती है, अंदरूनी इलाके उनसे बहुत दूर हैं और हमारे यहाँ साल में ज्यादा मौसम गर्म रहता है, इसलिए मछली का इस्तेमाल कम होता है। मछली को ताज़ा या सूखा कर डब्बों में बंद करके बैरूनी ममालिक भेज दिया जाता है और इस तरह हम मछलियों की बरामद से काफी जरे मुबादला कमाते हैं। मछलियों की इकसाम। पाकिस्तान में ज्यादातर तिरपला, झींगा, शार्क, सार्डिनी, हेरिंग, प्रॉन, मुस्लिमोन, पॉम्फ्रे और मकराल वगैरह मछली पाई जाती है। इसके अलावा बैरूनी ममालिक से मुख्तलिफ अकसाम के पोंग मंगवाकर पैदावार बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, जिनके नतज हौसला अफजा हैं। पाकिस्तान में बहुत से अकसाम को बरामद भी किया जाता है। माही गिरी की अकसाम। पाकिस्तान में 2 तरह की माही गिरी होती है। नंबर 1, ताज़ा पानी की माही गिरी। नंबर 2, समंदरी माही गिरी। नंबर 1, ताज़ा पानी की माही गिरी। पाकिस्तान के अंदरूनी इलाकों में मछली दरियाओं, तालाबों, झीलों, बंदों और डैमों से पकड़ी जाती है। ताज़ा पानी से मछली पकड़ने के लिए सूबा सिंध के जिला दादू की मंचर झील बड़ी अहमियत रखती है। इस झील से तकरीबन 20,000 टन मछली सालाना पकड़ी जाती है। ये सालाना अंदरूनी इलाकों की नस्बत सबसे ज्यादा है। इसी तरह कलरी झील और हालेजी झील, जो कि कराची के लिए पानी मुहैया करती है, मछलियों का बहुत बड़ा जखीरा है। दरियाए सिंध से ठट्टा, कोटरी और सखर के मकामात के अलावा सूबे पंजाब में दरियाओं, नहरों, बंधों, करबेला और मंगला की झीलों से भी काफी मकदार में मछली पकड़ी जाती है। अलावा अजीं सूबे पंजाब और सूबे सिंध में महकमा परवरिश माहीगीरी ने तकरीबन 2050 मछलियों के तालाब भी कायम किए हैं। महकमा परवरिश माहीगीरी ने मुख्तलिफ ममालिक से मछलियों की अकसाम बरामद की हैं, जिनमें से चीन से आने वाली मछलियों के नतायज काफी हौसला अफजा हैं। समंदरी माहीगीरी के इलाके सूबे सिंध और बलूचिस्तान के वो साहिली इलाके हैं जो बहिरा अरब से मुंसलिक हैं। हमारे मुल्क के जनूब में बहिरा अरब वाक़ है और इसमें समंदर का साहिली इलाका हमारे मुल्क के सूबे सिंध और सूबे बलूचिस्तान का साहिल कहलाता है। सूबे सिंध के साहिली इलाकों की माहीगीरी, जो साहिली इलाके कराची से कच्छ तक वाक़ हैं, इनकी लंबाई तकरीबन 180 मील है। इस साहिल पर जा बजा कटाव के निशानात हैं। कटाव के ये निशानात दरियाए सिंध की वजह से वजूद में आए हैं। दरियाए सिंध मुख्तलिफ जमानों में रास्ते बदल बदल कर इन इलाकों से बहिरे अरब में गिरता रहा है। दरियाए सिंध अपने साथ बहुत से नबाताती और हैवानाती अज्जा, जो कि मछलियों की खुराक बनते हैं, इस मवाद को लेकर समंदर में दाखिल होता है, जिसकी वजह से इन इलाकों में मछलियों के लिए खुराक काफी मकदार में हासिल होती है। इसलिए यहाँ पर मछली काफी मकदार में पाई जाती है। सूबे बलोचिस्तान के साहिली इलाकों की माहीगीरी, सूबे बलोचिस्तान के जनूब मगरबी साहिली इलाके को साहिल मकरान कहते हैं। ये साहिल तकरीबन 350 मील तक फैला हुआ है। इस तरफ से कोई दरिया बहिरा अरब में शामिल नहीं होता, जिस वजह से ये साहिली इलाका कटाव के निशानात से महरूम है। ये साहिली इलाका ऊंचे रेतीले टीलों पर मुश्तमिल है, इसलिए इन इलाकों में माहीगीरी के लिए हालात ज्यादा साजगार नहीं हैं। इन इलाकों में ज्यादातर माहीगीरी गवादर और पसनी के गिर्दो नवाह में की जाती है। मछली की नीलामी के मराकज, हुकूमत पाकिस्तान ने माहीगीरी की सनद को तरक्की देने के लिए कराची में एक जदीद मछली बंदरगाह कायम की है, ताकि मछली पकड़ने वाले कश्तियां यहां आसानी से आ जा सकें। इस मछली बंदरगाह पर बड़े बड़े सीमेंट के प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं, ताकि माहीगीर अपनी मछली यहां आकर नीलाम करवा सकें। मछलियों का नीलाम सरकारी इदारे के सुपुर्द है और माहीगीरों को नकद रकम फौरी तौर पर अदा कर दी जाती है। इसके अलावा मछली जखीरा करने के लिए सर्द खाने भी बनाए गए हैं, ताकि मछली को महफूज किया जा सके। इसी तरह गवादर और पसनी में भी मछली की नीलामी के लिए मराकज कायम किए गए हैं। यहाँ पर भी एक सर्द खाना कायम किया गया है, जहाँ पर 20 टन मछली महफूज की जा सकती है। लाइव स्टॉक, लाइव स्टॉक के माने माल मवेशी के होते हैं। माल मवेशी लोगों की आमदनी का एक अहम जरिया है। इसमें गाय, भैंसें, बैल, भेड़, बकरियां, गधे वगैरह अहम समझे जाते हैं। इन जानवरों से गोश्त, मक्खन, घी, चमड़ा, खाल और ऊन वगैरह हासिल होते हैं। इनके अलावा उनको काश्तकारी और बार बर्दारी वगैरह के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। लाइव स्टॉक के फवाइद, नंबर एक, गोश्त। पाकिस्तान में गोश्त की जरूरियात में पहले की निस्बत इजाफा हो गया है। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात में खाने की मेज पर गोश्त का होना जरूरी हो चुका है। इसके अलावा रोजाना लाखों की तादाद में लोग खाने में गोश्त इस्तेमाल करते हैं। मुल्क में गोश्त की जरूरियात गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट और मुर्गियों वगैरह से पूरी की जाती है। नंबर दो, सवारी। मौजूदा दौर में सवारी के लिए बहुत सी अशिया ईजाद हो चुकी हैं, जो कि तेज रफ्तार और आरामदेह भी हैं, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान में अभी तक सवारी के लिए जानवरों की मदद ली जाती है। हमारे मुल्क में बहुत से इलाके हैं जहाँ जहाँ पर सड़कें मौजूद नहीं हैं, या फिर गुर्बत के बायस लोग जदीद सहूलतों से फायदा उठाने में नाकाम रहते हैं। ऐसे इलाकों में जानवरों की मदद से मीलों तवील फासले तय किए जाते हैं। सवारी में घोड़ा, गधा और ऊंट काबिले जिक्र हैं। नंबर तीन, बारबरदारी। जरात से मुंसलिक अफराद को रोजाना बहुत सी अशिया खेतों को ले जाने और वापस लाने के लिए जानवरों की मदद से चलने वाली गाड़ियों की जरूरत पड़ती है, मसलन बैलगाड़ी और गधा गाड़ी वगैरह। इसके अलावा बैलगाड़ी और गधा गाड़ी को शहरों में भी बार बर्दारी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नंबर चार, दूध, मक्खन और घी। मुल्क की गजाई जरूरियात में दूध, मक्खन और घी बड़ी अहमियत रखते हैं। दूध, मक्खन और घी की जरूरियात पूरी करने के लिए गाय, भैंस, भेड़, बकरी और ऊंट काबिल जिक्र हैं। मुल्क में आला नस्ल के जानवर पाए जाते हैं जिनकी मदद से मुल्क की जरूरियात को पूरा करने में बड़ी आसानी होती है। नंबर 5, ऊन और चमड़ा। मौजूदा दौर में ज़रई शोबा सनअती शोबे को ऊन और चमड़े की शक्ल में खाम माल मुहैया करता है। मुल्क का सनअती शोबा इस खाम माल की मदद से आला किस्म का ऊनी कपड़ा और चमड़े की मसनूआत तैयार करता है जो मुल्क की जरूरियात को पूरा करने के अलावा बैरून मुल्क बरामद भी की जाती है, जिसकी मदद से बहुत सा ज़र मुबादला कमाया जाता है। ज़रई शोबा ऊन और चमड़ा जानवरों से हासिल करता है। इन जानवरों में गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां अहम समझे जाते हैं। लाइव स्टॉक के अहम जानवर। नंबर 1, भैंस। लाइव स्टॉक का सबसे अहम जानवर भैंस है, जिससे न सिर्फ गजाई जरूरियात पूरी की जाती हैं, बल्कि इससे चमड़ा भी हासिल किया जाता है। इसके अलावा इस जानवर की मदद से काश्तकारी और बारबरदारी का काम भी लिया जाता है। भैंस का दूध बाकी तमाम जानवरों के दूध से ज्यादा अहम समझा जाता है। भैंसों की सबसे खास नस्ल नीली बार जिला साहिवाल में कुंडी नस्ल समझी जाती है। इन जानवरों को पालने के लिए न सिर्फ निजी बल्कि सरकारी सतह पर भी फार्म बनाए गए हैं, जिनकी मदद से लाइव स्टॉक को बड़ी तरक्की हासिल हो रही है। नंबर 2, गाय। पाकिस्तान में गाय की आला नस्लें पाई जाती हैं जो ज्यादा दूध देने में बहुत मशहूर हैं। उनमें नीली रावी और सिंधी सुर्ख रंग की नस्लें बड़ी अहम हैं। निजी सतह पर तकरीबन पूरे मुल्क में छोटे बड़े फार्म हैं जहाँ इन जानवरों को पाला जाता है। इसके अलावा सरकारी सतह पर ओकाड़ा, लाहौर, रावलपिंडी और पिशावर वगैरह में भी फार्म कायम किए गए हैं ताकि मुल्क की जरूरियात को पूरा किया जा सके। नंबर 3, ऊंट। ऊंट को रेगिस्तानी जहाज कहते हैं। यह ज्यादातर रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है। इससे दूध और गोश्त हासिल करते हैं। ऊंट को बारबरदारी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा बाज इलाकों में इसकी मदद से काश्तकारी भी की जाती है। ये ज्यादातर चोलिस्तान, थल, थरपारकर और मकरान के इलाकों में पाया जाता है। नंबर 4, बकरियां। बकरियां तकरीबन पूरे मुल्क में पाई जाती हैं। इनकी बहुत सी अकसाम हैं। बकरियों की मदद से हम दूध, गोश्त, खालें और ऊन हासिल करते हैं। बकरियों की मुख्तलिफ अकसाम मैदानी इलाकों में पाई जाती हैं। इसके अलावा बहुत सी अकसाम पहाड़ी इलाकों में पाई जाती हैं। नंबर 5, भेड़ें। भेड़ें ज्यादातर गोश्त और ऊन हासिल करने के लिए पाली जाती हैं। इनकी खालों को भी इस्तेमाल में लाया जाता है। भेड़ों की तादाद ज्यादा ममालिक की निस्बत पाकिस्तान में बहुत कम है। ये ज्यादातर खुश्क इलाकों में पाई जाती हैं, मसलन चोलिस्तान, थल, थरपारकर वगैरह। नंबर 6, घोड़ा, गधा और खच्चर। ये तीनों जानवर सवारी और बार बर्दारी के लिए पाले जाते हैं। ये जानवर तांगे, बग्घियों और छोटी गाड़ियों को खींचने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। बार बर्दारी के हवाले से ये जानवर देहातों के अलावा शहरों में भी अहमियत रखते हैं। इन जानवरों को सवारी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 7, मुर्ग। मुर्गियों को पालना मुर्गबानी कहलाता है। मुर्गियों से हम गोश्त और अंडे हासिल करते हैं। पालतू जानवरों में सबसे ज्यादा मुर्गियां पाली जाती हैं। शहरों के अलावा देहात में भी पोल्ट्री फार्म कायम हैं जो मुल्क की जरूरियात को पूरा करने में बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं। लाइव स्टॉक की बरामदात। लाइव स्टॉक के जानवरों की मदद से न सिर्फ मुल्क की जरूरियात को पूरा किया जाता है बल्कि बहुत सा ज़र मुबादला भी कमाया जाता है। लाइव स्टॉक की मशहूर बरामदात दर्ज झेल हैं। नंबर 1, ऊन की मसनूआत। ऊन मुल्क के सनअती शोबे में बड़ी अहमियत रखती है। इससे बेशुमार मसनूआत तैयार की जाती हैं, मसलन कपड़ा, कंबल, कालीन और शालें वगैरह। इसके अलावा ऊन बहुत से मुल्कों को बरामद भी की जाती है। इस तरह लाइव स्टॉक से हासिल करदा ऊन से मुल्की मईशत को बड़ा फायदा हासिल हो रहा है। नंबर 2, गोश्त। पाकिस्तान में ज्यादातर मुर्गी के गोश्त को हिफ्जाने सेहत के उसूलों को मद्देनजर रखते हुए पैकेटों में बंद करके बहुत से मुल्कों को बरामद किया जाता है। नंबर 3, चमड़े की मसनूआत। लाइव स्टॉक के जानवरों से खालें हासिल की जाती हैं। ये खालें सनअती शोबे में खाम माल की हैसियत रखती हैं। सनअती शोबा इन खालों की मदद से चमड़ा तैयार करता है जो बरामद किया जाता है। इसके अलावा इस चमड़े की मदद से बहुत सी अशिया भी तैयार की जाती हैं, मसलन जैकेट्स, जूते, सूटकेस और मशीनों के बेल्ट वगैरह। चमड़े की मदद से तैयार करदा इन अशिया को बरामद भी किया जाता है। कुदरती वसाइल। पाकिस्तान में मुख्तलिफ अकसाम के कुदरती वसाइल मौजूद हैं। इनमें चट्टाने, पहाड़, मिट्टी, जंगलात और मादनियात सरे फहरिस्त हैं। ज़रूरत इस बात की है कि इन वसाइल से मुकम्मल तौर पर फ़ायदा उठाया जाए, क्योंकि किसी मुल्क और कौम की तरक्की का दारोमदार इस अमर पर होता है कि वहाँ के लोग वहाँ के वसाइल से किस हद तक फ़ायदा उठा सकते हैं। पाकिस्तान के अहम कुदरती वसाइल की तफसील दर्ज झेल है। नंबर 1, मिट्टी। किसी मुल्क की ज़रात का इन्हिसार इस मुल्क की मिट्टी की बनावट और मुख्तलिफ अकसाम पर होता है। मिट्टी से मुराद हमारी ज़मीन की वो बलाई सतह है जिसमें पूरे पौधे नशोनुमा पाते हैं। मिट्टी कुदरत का बहुत बड़ा अतिया है। मिट्टी की अकसाम। मिट्टी को दो अकसाम में तकसीम किया जाता है। जो मिट्टी किसी इलाके में मौसम की तब्दीलियों के अमल और चट्टानों की टूट फूट की वजह से वजूद में आती है, इसे मकामी मिट्टी कहते हैं। इसके अलावा कुदरती अवामिल के बायस जो मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाती है, इसे मुंतकिल शुदा मिट्टी कहते हैं। मिट्टी में तब्दीली। बहुत से इलाकों में मकामी चट्टानों की साख्त और नबाताती अज्जा की मिलावट के बायस इन इलाकों की मिट्टी का रंग और उसकी खसूसियात में तब्दीलियां रोनुमा होती रहती हैं। मसलन शुमाल मशरकी इलाकों की मिट्टी जो वहाँ की भूरी और सुर्खी माइल चट्टानों से बनी थी का रंग सुर्खी माइल था, लेकिन इसमें नबातात के पत्ते और घास वगैरह की शमूलियत से इसका रंग गहरा खाकी नजर आता है। शुमाल मगरबी पहाड़ी इलाकों में बारिश और नबातात की वजह से इसका रंग सुर्खी माइल है। दरिया सिंध के बालाई मैदानी इलाके की मिट्टी में कैल्शियम कार्बोनेट की मकदार ज्यादा और नामियाती अज्जा की मकदार बहुत कम है। ये मिट्टी आमतौर पर दरियाओं की मौजूदा गुजरगाहों से दूर के इलाकों में पाई जाती है। दरिया सिंध के पहाड़ी दामनी इलाकों जहलम, गुजरात, रावलपिंडी और सियालकोट की मिट्टी पथरीली कहलाती है। दरिया सिंध के बालाई मैदान के मशरकी अजला लाहौर, सरगोधा की मिट्टी बांगर कहलाती है। मुल्तान और बहावलपुर की इलाकों की मिट्टी खादर कहलाती है। थल और चोलिस्तान के सहराई इलाकों में पाई जाने वाली मिट्टी जर्द रंग की होती है, जिसमें चूना, फॉस्फेट, पोटैश और लोहा वगैरह के अज्जा शामिल हैं। ये अज्जा जरखेज़ ज़मीन के अहम अज्जा हैं। सतह मुर्तफा बलूचिस्तान के जनूब मगरब इलाकों में पाई जाने वाली मिट्टी जरखेज़ी के लिहाज से कम नहीं। इसका रंग कुदरती सुर्खी माइल है, जिसे लोटस कहते हैं। नंबर 2, जंगलात। पाकिस्तान के कुदरती वसाइल में जंगलात बड़ी अहमियत रखते हैं। जंगलात से सरजमीन खूबसूरत और दर्जा हरारत में एतदाल पैदा होता है। इसके अलावा ज़मीन की जरखेजी सेम थोर में कमी और तेज़ और तुंद आंधियों से फसलों और इंसानों को महफूज रखते हैं। जंगलात से हासिल शुदा लकड़ी से ईंधन और तामीरी जरूरियात भी पूरी की जाती हैं। हिफाजत और नशोनुमा। जंगलात की हिफाजत और नशोनुमा की तरफ काफ़ी तवज्जो दी जाती है। साल में 2 बार यानी फरवरी और अगस्त में हफ्ताई शजरकारी मनाया जाता है। इन मौके पर इनफरादी और इज्तमाही तौर पर लोगों को दरख्त लगाने और उनकी हिफाजत करने की खसूसी तरगीब दी जाती है। इसके अलावा सरकारी तौर पर सड़कों, नहरों और रेलवे लाइनों के साथ साथ दरख्त लगाए जाते हैं। इसी तरह बैराजों और डैमों के गिर्द भी दरख्त लगाए जाते हैं, ताकि पानी के कटाव के अमल पर काबू पाया जा सके। इकसाम। पाकिस्तान में कई किस्म की आबो हवा है, इस वजह से यहाँ मुख्तलिफ अकसाम के जंगलात पाए जाते हैं। मैदानी इलाकों में दरियाओं के किनारों पर महकमा जंगलात के कई जखीरे मौजूद हैं, जिनमें शीशम, पॉपुलर, सफेदा, कीकर और फ्राश के दरख्त मिलते हैं। नहरी इलाकों में जंगलात के सरकारी जखीरे छांगा मांगा, चीचावतनी, खानेवाल, तोबा टेक सिंह, बुरेवाला, बहावलपुर, सखर, थल, तौसा और कोटरी में मौजूद हैं। इनमें शहतूत, शीशम, सुंबुल, धेरक, सफेदे और जामुन के दरख्त मिलते हैं। दामने कोह के इलाकों में काहू, जंड, तूत, सुंबुल और फलाही के दरख्त मिलते हैं। ये जंगलात जहलम, गुजरात, मर्दान और अटक के अजला में पाए जाते हैं। पाकिस्तान के शुमाल और मगरबी इलाकों में मरी, एबटाबाद, मानसहरा, सवात, चित्राल और ऐसे इलाके जहाँ बारिशें दूसरी जगहों की निस्बत ज्यादा होती हैं, वहाँ ज्यादातर देवदार, चील, पड़तल और सनोबर के दरख्त बड़ी शोहरत रखते हैं। नंबर 3, मादनी वसाइल। किसी मुल्क की सनअती तरक्की में मादनी वसाइल बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। कुदरत ने हमारे मुल्क को बेशुमार मादनी वसाइल से नवाजा है, जिसमें मादनी तेल, कुदरती गैस, कोयला, नमक, क्रोमाइट, लोहा, जिप्सम, तांबा, चूने का पत्थर, संगमरमर, कीमती पत्थर, आतिशी मिट्टी और गंधक शामिल है। नंबर एक मादनी तेल। ये तेल हमारे मुल्क में आमतौर पर तहदार चट्टानों में पाया जाता है। इस तेल को आम जबान में मिट्टी का तेल कहते हैं। पाकिस्तान में खाम तेल की पैदावार मुल्क की जरूरियात से बहुत कम है। एक अंदाजे के मुताबिक सिर्फ तकरीबन 10% तेल हम अपने वसाइल से हासिल करते हैं। लिहाजा मुल्क की जरूरियात को पूरा करने के लिए बैरून मुल्क से खाम तेल खरीदा जाता है। ये तेल जमीन के अंदर मौजूद बहुत से नबाताती और हैवानी अज्जा के कीमियाई मुरकब शुमार किया जाता है, जिसे हम खाम तेल या क्रूड ऑयल कहते हैं। मादनी तेल के जखायर। पाकिस्तान में जिन इलाकों से खाम तेल हासिल किया जाता है, इनमें घोड़, ढलियां, तट, कोट सारंग, मेयाल, धरमंदर, जिला टक, आधी काजियां, जिला रावलपिंडी, ढोडक, जिला डेरा गाजी खान, करसाल, जिला जहलम और खास तेली, जिला बदीन ज्यादा अहम है। तेल की तलाश में कुएं खोदे जाते हैं और जदीद किस्म की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है। ज्यादा अखराजात की वजह से मुल्क के सरमायाकारों से मदद ली जाती है। हमारे मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में तकरीबन 21 गैर मुल्की कंपनियां तेल और गैस की तलाश में मसरूफ हैं। ये गैर मुल्की कंपनियां तेल और गैस तलाश कर गैस की तरक्की कारपोरेशन OGDC से मुल्क मुल, मिलकर OGDC से मिलकर तेल की तलाश में मसरूफ हैं। तेल साफ करने वाले कारखाने। खाम तेल को रावलपिंडी के नवाह में मोरगा और धरनाल के मुकाम पर कायम शुदा रिफाइनरियों में साफ किया जाता है। कराची में भी दो तेल साफ करने वाले कारखाने मौजूद हैं। इसके अलावा मुल्तान में भी 105 मिलियन योमिया तेल साफ किया जाता है, जबकि मुल्क के दीगर हिस्सों में से तेल टैंकरों के जरिए तेल साफ करने वाले कारखानों तक पहुंचाया जाता है। तेल और गैस की तरक्याती कारपोरेशन। 1961 में रूस के तावुन से हुकूमत पाकिस्तान ने एक इदारा कायम किया, जिसे तेल और गैस की तरक्याती कारपोरेशन कहते हैं। इस कारपोरेशन ने 277 कुओं पर खुदाई की है, जिसमें उन्हें 34 मकामात पर कामयाबी हासिल हुई, जिसमें 23 कुओं से तेल और 11 कुओं से गैस हासिल हुई है। इस कारपोरेशन के क्याम से मुल्क में मादनी तेल की पैदावार में इजाफा हुआ है। पाकिस्तान स्टेट ऑयल। हुकूमत पाकिस्तान ने दिसंबर 1976 में पाकिस्तान स्टेट ऑयल के नाम से एक इदारा कायम किया, जो तेल और उसकी मसनूआत की खरीदो फरोख्त में मसरूफ है। इस इदारे के मुल्क में 33 बड़े डिपो हैं, जहां 350,000 टन तेल जखीरा किया जाता है। नंबर चार, कुदरती गैस। पाकिस्तान में कुदरती गैस के जखायर खाम तेल की निस्बत ज्यादा हैं। पाकिस्तान अपनी तवानाई की जरूरत का तकरीबन 35% कुदरती गैस से पूरा करता है। सूबे बलूचिस्तान में सूई, जिला सिद्दी में 1952 में पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड कंपनी ने तेल की तलाश के दौरान कुदरती गैस के बहुत बड़े जखायर दरियाफ्त किए। इन जखायर का शुमार दुनिया के अजीम जखायर में होता है। पाकिस्तान में कुदरती गैस के अहम जखायर दर्ज झेल हैं। नंबर एक, सूई, जिला सिद्दी। कुदरती गैस या जखीरा मुल्क का सबसे बड़ा और कदीम जखीरा है। यहाँ पर पाई जाने वाली गैस के महफूज जखायर का अंदाजा 2,440 मिलियन क्यूबिक फिट लगाया जाता है। पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड ने यह जखायर 1952 में दरियाफ्त किए। ये जखायर सूबा बलूचिस्तान में पाए जाते हैं। नंबर दो, मियाल, जिला अटक। ये जखायर 1968 में पाकिस्तान गैस फील्ड लिमिटेड कंपनी ने दरियाफ्त किए। यहाँ पर पाई जाने वाली गैस के महफूज जखायर का अंदाजा 12.76 बिलियन क्यूबिक मीटर लगाया जाता है। यहाँ से हासिल होने वाली गैस को पाइपलाइन के जरिए रावलपिंडी के इलाकों से मिलाया गया है। इसके अलावा कुछ गैस सिलेंडरों में भरकर मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में पहुंचाई जाती है। नंबर तीन, धरनाल, जिला चकवाल। 1989 में ऑक्सीडनल कंपनी ने ये जखायर दरियाफ्त किए। यहाँ पर पाए जाने वाले जखायर से 10 बिलियन क्यूबिक फिट योमिया गैस हासिल की जाती है। यहाँ से कुदरती गैस सिलेंडरों में भरकर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों को पहुंचाई जाती है। नंबर चार, कुवत, जिला अटक। पाकिस्तान की तेल और गैस की तरक्याती कॉरपोरेशन ने 1968 में ये जखायर दरियाफ्त किए। इन जखायर से मादनी तेल भी हासिल होता है। यहाँ से हासिल होने वाली गैस को पाइपलाइनों के जरिए रावलपिंडी के गिर्दो नवा में वाकई बहुत सी सनतों में इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 5, दहलिया, जिला अटक। ये ज़खायर अटक ऑयल कंपनी ने दरियाफ्त किए। यहाँ पर पाई जाने वाली गैस के महफूज ज़खायर का अंदाजा 12.76 बिलियन क्यूबिक लगाया गया है। इस गैस को पाइपलाइन के जरिए रावलपिंडी और इसके करीब वाह के मकाम पर सीमेंट और असलाह साजी के कारखानों में इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 6, पीरको, जिला सिब्बी। 1977 में पाकिस्तान की तेलो गैस की कॉरपोरेशन ने ये जखायर दरियाफ्त किए। यहाँ से हासिल होने वाली गैस को पाइपलाइन के जरिए सुई के मकाम तक पाइपलाइन से मिला दिया गया है। इस मकाम से 193 बिलियन क्यूबिक योमिया गैस हासिल की जाती है। नंबर 5, कोयला। पाकिस्तान में कई मकाम पर कोयले के जखायर मौजूद हैं। अगरचे पाकिस्तान में कई मकाम से कोयला निकलता है, लेकिन जरूरियात का सिर्फ 10% है। मुल्क में पाया जाने वाला कोयला चूंकि अच्छी नौईयत का नहीं होता, इसलिए ये ज्यादा चूना और ईंटे बनाने वाले भट्टों में इस्तेमाल होता है। पाकिस्तान के मौजूदा इलाकों में कानों से कोयला निकालने का आगाज 1887 में हुआ, जहाँ जिन इलाकों में कोयला मिलता है इनके मुताबिक कहा जाता है कि ये ट्रेजरी जमाने की तहदार चट्टाने हैं, जो आज से तकरीबन 50 से 60 मिलियन साल पहले वजूद में आई। हमारे मुल्क में पाए जाने वाले कोयले का शुमार दूसरे या तीसरे दर्जे के कोयले में किया जाता है, जिन्हें लिग्नाइट और बेटोमेंस के नाम से पुकारा जाता है। हुकूमती अरकान का कयाम। हुकूमत पाकिस्तान ने 1974 में एक इदारा कायम किया, जिसे मादनी तरक्की की कारपोरेशन कहा जाता है। इस कारपोरेशन ने जदीद उसूलों पर अमल करते हुए मुल्क में कोयले की पैदावारी इजाफे के लिए बहुत से प्रोग्राम शुरू कर रखे हैं। इस कॉरपोरेशन की वजह से मुल्क में कोयले की पैदावार में इजाफा हो रहा है। कोयले के जखायर। नंबर 1, सूबा पंजाब में कोयले के जखायर। सूबा पंजाब में कोयले की सबसे बड़ी कान कोहिस्तान नमक में मकड़वाल के इलाके में है। इस इलाके में डंडोत और पड के मकाम से भी कोयला निकलता है। नंबर 1, मकड़वाल की कानें। ये काने जिला मियांवाली में मकड़वाल के इलाके में वाकई हैं। इस इलाके में कोयले की काने कालाबाग के मगरिब में 8 मील से शुरू होकर मकड़वाल तक फैली हुई हैं। इस कान से कोयला निकालने का इंतजाम पाकिस्तान मादनी तरक्याती कारपोरेशन के सुपुर्द है। इस इलाके में कोयले की तहों के मोटाई 2 ता 10 फिट के करीब है। मकड़वाल के कान पाकिस्तान की सबसे बड़ी कान है। नंबर 2, दंडोत और पड की काने। कोयले का ये इलाका जिला खुशाब के शुमाल की जानब तकरीबन 20 मील तक अंदाजन 100 मील के रकबे पर फैला हुआ है। इस इलाके से हासिल होने वाले कोयले में राख, गंधक और धुएं की मकदार काफी ज्यादा है, और कोयले की तहें ज्यादा मोटी नहीं है, जिसकी वजह से इस कोयले को ज्यादा बेहतर नहीं समझा जाता। नंबर 2, सूबे बलूचिस्तान में कोयले के जखायर। सूबे बलूचिस्तान में कई मकाम पर कोयले के जखायर मौजूद हैं, जिनमें शाहरग, खोस्ट, हरनाई, सार, देगारी, शीरी काबिले जिक्र हैं। अब बोलान और मच्छ के इलाकों में भी कोयले की कानें हैं। शाहरख के मकाम पर कोयले का प्रोसेसिंग प्लांट भी लगाया गया है। नंबर 1, शाहरख की कानें। कोयले के ये जखायर 80 मुरबा मील के रकबे में फैले हुए हैं। ये इलाका हरनाई से कोयला के मशरक में 20 मील तक फैला हुआ है। इस इलाके में खोस्ट और हरनाई के मकाम पर ज्यादा मशहूर हैं। ये कोयला बेहतर खसूसियात का हामिल है। नंबर 2, देगारी की कानें। कोयले के ये जखायर 18 मुरबा मील के रकबे पर फैले हुए हैं। ये इलाका कोयटा से तकरीबन 10 मील के फासले पर मशरक के जानिब वाक़े है। इस इलाके का कोयला उम्दा किस्म का नहीं होता, इसलिए ज्यादातर ईंटे पकाने के काम में आता है। नंबर 3, मच्छ की कानें। ये जखायर तकरीबन 16 मील के रकबे पर फैले हुए हैं। ये इलाका सिब्बी कोयटा रेलवे लाइन के दोनों तरफ वाकई है। यहाँ से हासिल होने वाला कोयला भी उम्दा किस्म का नहीं है। नंबर 3, सूबा सिंध के कोयले के जखायर। सिंध के जेरी इलाके झम्पीर और लाखड़, जिला दादू की कानें काफी अहम हैं। खसूसियात के अतबार से ये कोयला भी उम्दा नौयत का नहीं है। नंबर 1, झम्पीर की कानें। ये जखायर तकरीबन 350 मुरबा मील के रकबे पर फैले हुए हैं। یہ علاقہ کراچی کے شمال میں تقریباً 80 میل کے فاصلے پر جھمپیر اور میٹنگ ریلوے اسٹیشن تک پھیلا ہوا ہے۔ نمبر 2، لاکھڑا کے کانے۔ یہ ذخائر تقریباً 80 مربع میل کے رقبے پر پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ علاقہ دادو برانچ لائن پر پاکستان ریلوے کے خانوٹ ریلوے اسٹیشن سے 10 میل مغرب میں واقع ہے۔ اس کوئلے میں نمی کی مقدار زیادہ ہے۔ نمبر 4، نمک۔ ہمارے ملک میں معدنی نمک کے وسیع ذخائر موجود ہیں، جن کا شمار دنیا کے بڑے بڑے ذخائر میں ہوتا ہے۔ ان میں سے بڑی کان کھیوڑا میں ہے۔ اس کے علاوہ واڑچھا ضلع، خوشاب کالا باغ ضلع، میاں والی اور بہادر خیل ضلع کرک کے مقام سے نمک حاصل ہوتا ہے۔ کراچی کے ماڑی پور اور ساحل مکران کے علاقوں میں نمک کے پانی سے سمندر کے پانی سے نمک حاصل کیا جاتا ہے۔ ان ذخائر کی چوڑائی 600 میل تک اور گہرائی 275 فٹ تک پائی گئی ہے۔ نمک کے ذخائر۔ نمک کے چند اہم ذخائر کی تفصیل درج ذیل ہے۔ نمبر 1، کھیوڑا ضلع جہلم۔ ان ذخائر میں نمک کی گہرائی 60 فٹ تک پائی گئی ہے۔ ان ذخائر کی دریافت مغلیہ دور کے زمانے سے پہلے ہو چکی تھی۔ کھیوڑا کے ذخائر کو مکڑوال کے ساتھ ریل کے ذریعے ملایا گیا ہے۔ نمبر 2، وارچھا ضلع خوشاب۔ ان ذخائر میں نمک کی گہرائی 50 فٹ کے لگ بھگ ہے۔ یہ ذخائر گنجیال ریلوے اسٹیشن سے شمال مغرب میں تقریباً 10 میل کے فاصلے پر واقع ہیں۔ یہاں کی پیداوار 50,000 ٹن کے قریب ہے۔ نمبر 3، بہادر خیل ضلع کرک۔ یہاں پر پائے جانے والے ذخائر میں نمک کی گہرائی 350 فٹ کے قریب ہے۔ ان علاقوں میں محفوظ ذخائر کی تعداد کافی زیادہ ہے۔ نمبر 4، کالا باغ ضلع میاں والی۔ اس علاقے میں نمک کے ذخائر پائے جاتے ہیں، لیکن ان کی پیداوار کافی کم ہے۔ نمبر 5، جھیل اور سمندر۔ ہمارے ملک میں کچھ نمک جھیلوں اور سمندروں سے بھی حاصل کیا جاتا ہے۔ کراچی میں سمندری پانی، جھیلوں کے پانی اور بلوچستان کی نمکین جھیل ہامون شیخل سے بھی نمک حاصل کیا جاتا ہے۔ نمبر 5، کرومائٹ۔ کرومائٹ ایک دھات ہے جو فولاد بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ یہ فوٹوگرافی کی صنعت میں بھی استعمال ہوتی ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ کرومائٹ پاکستان میں پیدا ہوتی ہے۔ پاکستان اسے دوسرے ممالک کے ہاتھ بیچ کر زر مبادلہ بھی کماتا ہے۔ کرومائٹ کے ذخائر۔ صوبہ بلوچستان میں خاران، ضلع چاغی اور وادی ایوب کے علاقوں میں کرومائٹ کے ذخائر پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جنگ تورگاہ اور خانوزئی کے مقامات کی کانیں کافی اہمیت کی حامل ہیں۔ علاوہ ازی کچھ کرومائٹ کے ذخائر صوبہ سرحد میں مالاکنڈ اور مہمند ایجنسی کے علاقوں میں بھی دریافت ہوئے ہیں۔ نمبر 6، جپسم۔ جپسم جن علاقوں سے حاصل ہوتا ہے، ان میں جہلم، میاوالی، ڈیرہ غازی خان، کوئٹہ، سبی اور کوہاٹ کے اضلاع سر فہرست ہیں۔ ان کے محدود ذخائر بہاولپور، دادو، سانگھڑ اور ڈیرہ اسماعیل خان کے اضلاع میں دریافت ہوئے ہیں۔ نمبر 7، تانبا۔ تانبے کا استعمال بجلی کی اشیاء، خصوصاً تارے بنانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ زمانہ قدیم میں اس سے صرف سکے اور برتن بنائے جاتے تھے۔ پاکستان میں اندازاً تانبے کے ذخائر 412 ملین ٹن سے زیادہ ہیں۔ تانبے کے ذخائر۔ تانبے کے ذخائر صوبہ بلوچستان اور صوبہ سرحد کے بہت سے مقامات پر دریافت ہوئے ہیں۔ بلوچستان میں ضلع چاغی، سینڈک اور بعض دیگر مقامات پر دریافت ہونے والے ذخائر نہایت اہمیت کے حامل ہیں۔ سینڈک کے مقام پر دریافت ہونے والے ذخائر کا اندازہ 412 بلین ٹن لگایا گیا ہے۔ یہ صفحہ نمبر 148 ہے۔ پارٹ نمبر 13 یہاں مکمل ہوتا ہے۔